صفحہ نمبر 9، باپ اول اپنی ہر آرزو کی تکمیل، باپ کی قید اور بھائیوں کی موت کے بعد اورنگزیب نے 15 جون 1656 کو 9 دن جشن منانے کا حکم صادر کیا، جس کے دوران امرائے سلطنت نے اسے مبارکباد دی اور بیش قیمت نذرانے پیش کیے۔ اس نے مرچ سے نظر اتارنے کی رسم جو شہزادگی کے ایام میں دکن میں شروع کی تھی جاری رکھی۔ یہ رسم اس طرح ادا کی جاتی تھی کہ ایک مشت مرچ پر وہ کچھ دعائیں پڑھتا اور انہیں انگاروں پر ڈال دیتا، یہاں تک کہ کچھ دیر اس میں سے دھواں نکلتا رہتا۔ بعد ازاں اس آگ اور دھواں دیتی مرچوں کو باہر کسی ٹیلے پر پھینک دیا جاتا تھا، جہاں ساری مرچیں جل جاتی تھیں۔ اس سے یہ علم تھا کہ لوگ اس کی ناجائز تخت نشینی پر خفا تھے، لہٰذا جشن کے خاتمے پر اس نے سلطنت کے نظم و نسق کی جانب توجہ دی، تاکہ وہ جتا سکے کہ اس کا مقصد محض ملک گیری نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جسے شاہ جہاں کی لاپرواہی اور دارساں کی ناسمجھی نے تباہی و بربادی کے قریب پہنچا دیا تھا۔ بس اس نے سب سے پہلے ان امیروں کو انعام و اکرام سے نوازا جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، جسے سنگ پر سمبر کے لوبے کی توثیق کی گئی تھی۔ دیگر امرا کو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، ہر امیر کو خلعت ملی اور سب سے برگزیدہ امیر کو نہایت خوبصورت قبضہ والا جڑواں خنجر، ایک ہاتھی اور ایک گھوڑا ملا۔ اسے یہ خوب معلوم تھا کہ بادشاہ کے لیے کشادہ دلی اور سخاوت لازمی اور اوصاف ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ عدل اور قوت نہ ہو تو وہ بیکار ہیں، بلکہ یہ کہ بدماش آدمی انہیں مزید برائیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اس بیت میں ہے، نیکوں کو ہے گتا سے نفر خواہش جزا، نافر ہیں بدگناہ سے کہ ہیں خائف از سزا۔ پس جشن کے بعد اس نے یہ حکم صادر کیا کہ 500 چوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ بدماشوں کو عبرت ہو۔ یہ سزا انہیں اس مسجد کے سامنے دی جانے والی تھی جو قدم رسول کے نام سے موسوم ہے۔ اس مسجد میں ایک پتھر پر 2 پیروں کے نشانات کندہ ہیں، جنہیں مسلمان بہت محترم خیال کرتے ہیں، اس لیے محض شہر دلی کے انتظامات درست کرنے پر اکتفا نہ کی جو اس کا پایا تخت تھا، بلکہ تخت کے ناجائز حصول پر پردہ دانے کے لیے مختلف صوبوں میں قدیم اہلکاروں کی جگہ نئے صوبے داروں اور نائبائن کا تقرر بھی کیا۔ اس نئے حاکموں کو اس نے بہتر احکامات دیے، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے احکامات بھی دیے جو اس کی فریب کاریوں اور سازشوں کے مقاصد پورے کرتے تھے۔ ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ 2 جھوٹے عہد نامے کر کے لوگوں کو اپنی جانب کریں اور پڑوسی مملکتوں میں بغاوت کرائیں، اگر ان کی کوششیں باآور ہو جائیں تو وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلا دیں۔ اس طرح ان کے جھوٹے عہد و پیمان اور گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، خواہ انہوں نے قرآن کو درمیان میں لا کر 1000 عہد کیوں نہ کیے۔ اورنگزیب نے یہ محسوس کیا کہ دیگر بد نظمیوں میں ایک بد نظمی ہندوستان میں بالخصوص شہر دلی ہے، یہ تھی کہ مسلمان اور ہندوؤں کو شراب نوشی کی کھلی آزادی تھی۔ چونکہ وہ خود کو قرآن کا سخت پابند کہتا تھا، اس لیے شراب سے سخت نفرت کرتا تھا۔ یہ آزادی جہانگیر کے زمانے میں حاصل ہوئی۔ اکبر نے سب سے پہلے عیسائیوں کو یہ اجازت دی کہ وہ شراب کشید کریں اور اسے استعمال کریں، لیکن اس کے زمانے میں مسلمانوں میں شراب نوشی کی رسم نہ تھی۔ جہانگیر کی بری مثال کے سبب یہ لعنت مسلمانوں میں بھی عام ہو گئی۔ شاہ جہاں کے زمانے میں مسلمان شراب اتنی زیادہ پیتے تھے جیسے پانی۔ دار کی مثال سے انہیں और तकवियत मिली। शाहजहां ने भी, जो खुद शराब नहीं पीता था, उस बदनज़मी को दूर करने की कोशिश नहीं की। उसने हर एक को इसके हाल पर छोड़ दिया था और खुद औरतों के दरमियान जिंदगी गुजार कर खुश रहता था। औरंगज़ेब की तख्त नशीनी के वक्त शराब नोशी इतनी आम थी कि एक दिन उसने मुश्तल होकर ये कहा कि सारे हिंदुस्तान में महज दो अशखास ऐसे मिलेंगे जो शराब नहीं पीते, एक तो वो खुद और दूसरे काजी अब्दुल वब्बाब। लेकिन अब्दुल वब्बाब की बाबत उसे गलत फहमी थी, इसलिए मैं खुद उन्हें शराब की एक बोतल रोज़ाना बेचता था, जिसे वो इतना छुप कर पीते थे कि बादशाह को इसका इलम ना हो सका। औरंगज़ेब ने उस बदनज़मी को ख़त्म करने के लिए ये अहकामात नाखस किए कि तबीबों और जराहों के अलावा सारे ईसाई शहर छोड़कर तोप खाने के पास जा बसें, जो फौजी इलाकों से दूर शहर से तकरीबन 3 मील के फासले पर था। वहां उन्हें इस बात की इजाज़त थी कि वो शराब कशीद करें और पिएं और बशर मलकियां से फरोख्त न करें। इन अहकामात के बाद उसने कोतवाल को यह हुक्म दिया कि वो इन हिंदुओं और मुसलमानों का सराग लगाए जो शराब फरोख्त करते हों, और उसकी सजा में उनका हाथ और एक पांव काट दिया जाए। कोतवाल ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी, हालांकि वो खुद भी शराब पीता था। एक दिन मैंने देखा कि उसने 6 हिंदुओं और 6 मुसलमानों को सजा दी। उसके बाद उसने ये हुक्म दिया कि इन्हें कोड़े के ढेर पर फेंक दिया जाए, जहां बिला आखिर वो मर गए। ये ताज़ीराती हुक्म कुछ मुद्दत तक जारी रहा। इस दौरान मैं कोई शख्स शराब न फरोख्त करता था। जब कभी कोतवाल को ये शक होता कि किसी घर में शराब कशीद की जाती है, तो वो सिपाहियों को वहां भेजता, जो सारे घर में तहस नहस कर देते। अव्वल अव्वल तो ये कानून सख्ती से नाफज किया गया, आहिस्ता आहिस्ता उस सख्तगिरी में मक्की आती गई। कानून की सख्त पाबंदी के ज़माने में भी वो उमरा जो शराब के बगैर नहीं रह सकते थे, अपने घरों में कुशीद करते थे। ऐसे बहुत कम अमीर जो खुफिया तौर पर न पीते हों। मैंने अभी कहा कि ईसाइयों को अपने इस्तेमाल के लिए शराब कशीद करने की इजाज़त थी, मगर फरोख्त करना ममनू था। इसलिए उन पर पहरेदार मुकर्र किए गए ताकि वो उन पर निगाह रखें कि वो शराब ना फरोख्त करने। इसके बावजूद उसमें ना मुनाफा बहुत था, इसलिए वो बाज ना आते थे। 2000 बहानों से खुफिया तौर पर फरोख्त करते थे। गो जब कोतवाल को खबर होती तो वो आदमियों को भेजकर घर लुटवा देता। मुजरम के गले में आला शिकनी डाल दिया जाता और जंजीरों में जगड़कर बरसरे आम थप्पड़ मारते हुए उसे कोतवाल के घर से ले जाया जाता। यहाँ तक के पहुँचते पहुँचते वो अधमुआ हो चुका होता, फिर उसे बंदी खाने में कैद कर दिया जाता। कई माह बाद जुर्माने और दो कोब की सजा के बाद उसकी रहाई मुमकिन होती। लेकिन ईसाइयों की बेशर्मी और गुस्ताखी इस हद तक थी कि वो बाज न थे। ये लोग मुख्तलिफ इकवाम से ताल्लुक़ रखते थे और बेशतर चोर और मुजरिम थे। मैं ये बात ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुग़लों के तोपखाने में काम करने वाले ईसाई महज बराए नाम ईसाई रह गए थे। उनमें ईसाइत की रुमतक तक न रही थी। वो मुसलमानों और हिंदुओं से बदतर थे। खौफ खुदा उनमें मुतल्लक ना था। 10-10, 12-12 बीवियों के मालिक थे। हमा वक्त नशा में रहते थे। जुआ खेलने के अलावा कुछ ना करते थे और हर किसो नाकस को देखा धोखा देने की फिक्र में रहते थे। इन वजूहात के सबब मुग़लों के मुल्क में ईसाइयों की अब वो वक्त नहीं जो पहले थी। अक्सर थोड़ी सी तनख्वाह के लालच में अपने अकायद तर्क करके मुसलमान हो जाते। गोया ये बात बख्शिश के लिए कोई मानी नहीं रखती कि आदमी ईसाई से मुसलमान। मुसलमान नशे के इतने आदि हैं कि उन गरीब आदमियों ने जिनके पास इतनी रकम नहीं होती कि वो शराब हासिल कर सकें, एक और मशरूब दराफत कर ली है जिसे उस मुल्क में जबान में भंग कहते हैं। ये महज खुश बरगे हशीश को पेश को बनाते हैं जो पीने के साथ ही नशा देती है। इस बुराई को भी औरंगज़ेब ने कुचलना चाहा, इसलिए उसने मुतहब नाम के एक अहदेदार का तकरर किया जिसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो इस मशरूब या इस किस्म की दिगर मशरूबात के लिए इस्तेमाल को रोके। कोई दिन ऐसा न गुज़रता जब सुबह सवेरे उठकर हमें उन बर्तनों और तसलों को तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आती जिनमें इन मशरूबात को तैयार किया जाता था। लेकिन इस बात के पेश नज़र के रोज़ अखू पीते थे और नशे में रहना पसंद करते थे, आहिस्ता आहिस्ता इस ममानत में भी लचक आती गई। औरंगज़ेब ने यह दिखाने के लिए कि वो मज़हब का सख्ती से पाबंद है एक और मज़ख़ा खेज हरकत की। उसने ये अहकाम जारी किए कि कोई मुसलमान 4 उंगल से ज़्यादा लंबी दाढ़ी ना रखे। उमरा अपनी लंबी लंबी दाढ़ियों को महफूज रखने के लिए बड़ी एहतियात करते, उनके लिए रोगनों का इस्तेमाल करते थे। अब एक ऐसे अहदेदार का तकरर हुआ जो अपनी मताहतों और सिपाहियों के साथ बीच सड़क पर लोगों की दाढ़ियाँ नापता और हसबे ज़रूरत उन्हें मुख्तसर कर देता। मामूली लोगों के अलावा औरों पर यह अहकाम नाखज ना हो सके, इसलिए कि वह अहदेदार जिसे ये काम सपुर्द था उमरा और सिपाहियों के मुतअर्ज होते, डरता था कि कहीं खुद उसे नुकसान ना पहुँचते। बहरहाल इस मज़ख़ा खेज खेज सूरत हाली थी कि अमूरेश का मुतलका अहदेदार इधर उधर भागता और गरीब गुरबा की दाढ़ियाँ पकड़ता फिरता था ताकि मुकर्रा मकदार से ज़्यादा को तराश दे और मूछों को साफ़ कर दे कि लब नमाया हो जाए। मूछों की सफाई इसलिए ज़रूरी थी कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उस आवाज़ के आसमान तक बराह रास्त पहुँचने में कोई रुकावट ना हो। ये मंज़र भी अजीब था कि सिपाही और दूसरे लोग जब इस अहदेदार को दूर से देखते तो अपने चेहरों को चादरों से छुपा लेते ताकि तोहीन ना हो। इन अहकामात से औरंगज़ेब की तसल्ली ना हुई और अब उसने मुसीकारों की एक कसीर जमात के खिलाफ कदम उठाया। हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंद दोनों में गानों और साजों की मुसीकी के बहुत शौकीन होते थे। बस उसने इस अहदेदार को यह हुक्म दिया कि वो मुसीकी को बंद करे और अगर किसी घर से या कहीं और उसे गानों की या साजों की आवाज़ सुनाई दे तो वो फौरन मौका पर पहुंचकर जितने लोगों को गिरफ्तार कर सकता है गिरफ्तार करे और साजों को तोड़े। इस तरह बहुत बड़ी तादाद में साज तबाह कर दिए गए। मौसीकारों ने जब ये देखा कि वो मुसीबत में हैं, उनकी वाफर आमदनी ख़त्म हो गई है और अब उनके पास रोज़ी कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और बादशाह को इस तौर मनाने की कोशिश की कि एक जुमा को जब औरंगज़ेब मस्जिद को जा रहा था तकरीबन 1,000 मौसीकार जमा हुए। वो मुल्क के रवाज के मुताबिक तकरीबन 20 ज़रबर्क जनाजे लिए शदीद रंजो गम में रोते चिल्लाते और अपने जज्बात का इजहार करते आए, गोया वो किसी बड़ी मुमताज़ मरहूम शख्सियत को दफनाने जा रहे हों। औरंगज़ेब ने दूर से इस मजमे को देखा और उनकी गिरिया जारी सुनी और मुतअज्जब होकर इस आह वबका का सबब दराफ़त किया। मौसीकार ने अपने रंजो गम और अश्कबारी को ये समझ कर रोना कर दिया कि शायद बादशाह को उन पर रहम आ जाएगा। गिर वजारी के दरमियान उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह के अहकाम ने मौसीकारी को मार डाला है, इसलिए हम इस फन करने ले जा रहे हैं। बादशाह को ये खबर मिली तो उसने नहायत सुकून से जवाब दिया कि सब लोग मौसीकी की रूह की बख्शिश के लिए दुआ करें और इस बात का ख्याल रखें कि उसे अच्छी तरह दफनाया जाए। इसके बावजूद अमरा ने पोशीदा तौर पर गाना सुनना बंद न किया। ये अहकाम भी महज खास खास शहरों में नाफज किए गए। शाहजहां के ज़माने में रक्सासों और तवायफों को बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल थी और शहरों में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अपने दौरे हुकूमत के आगाज़ में औरंगज़ेब ने उनसे कोई तारस न किया, मगर बाद उजां उसने ये हुक्म दिया कि तो वो शादियां कर लें या फिर हदूद सल्तनत से बाहर निकल जाएं। इस सबब से उनकी रहाइश गाहें आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो गईं। कुछ ने शादियां कर लीं, कुछ चली गईं या कम अज कम पोशीदा हो गईं। का इंतकाल हुआ, हाथी भी इस दुनिया से कूच कर गया। सबसे बड़ी लानत जो मुगलिया सल्तनत में पहले भी थी और आज भी है, वो पाक बाज दरवेशों की फरेबकारी और मुनाफकत है। ये लोग खुद को औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यानी सैयद कहते हैं। लोगों को अपनी मुनाफकत और झूठे करिश्मों से धोखा देते हैं। लोग उन्हें वली अल्लाह समझकर उनके पास औलाद, बीवी या शोहर के हसूल के लिए आते हैं। कुछ लोग उनके तौसल से मुलाजमत या दरबार में हसीयत चाहते हैं। कुछ इश्क में कामयाबी तो कुछ दुश्मनों पर फतह या तिजारत में मुनफत चाहते हैं। गोया हर आदमी अपनी मखसूस हाजत की बराबरी के लिए आता है। ऐसे लोगों के पास कोई खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ नजराना ज़रूर लाता है। इस तरह ये पाक बाज लोग ऐसो इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं। इन्हें ये मालूम है कि अपने जल फरेब को किसी तरह मुनाफकत से छुपाया जाए। शैतानी इमदाद से ये लोग पर दुआ तवीज़ के ज़रिए अपना असर कायम करते हैं। सबसे बढ़कर कि ये वो औरतों को जो उनके पास कसीर तादाद में आती हैं अपने हल्का अकीदत में रखते हैं, वो मौका से फ़ायदा उठाना खूब जानते हैं। और अगर औरत हसीन हो तो क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या ईसाई, वो किसी को नहीं बख्शते। मजीद बना अपने घरों में वो बहुत सी बीवियां और लोंडियां रखते हैं। इन्हें वो रात को हर चहार जानब भेजते हैं और जो खुद को इस का मुतकद बनाकर उनके लिए हराम की रोज़ी का बंदोबस्त करती हैं, या फिर अपने मुल्क और इस औरत के दरमियान जिस पर उसकी नज़र होती है कुटनियों का काम करवाते हैं ताकि उसे अपने घर ला सकें। ये सब कुछ मज़हब के नाम पर होता है। ये औरतें इस बात का भी पता नहीं चलाती कि जो लोग मुरादें मांगते आते हैं उनकी मुरादें पूरी हुई या नहीं। ये इसलिए किया जाता है कि पहले ही से मालूमात हासिल हो जाएं। ये औरतें उन लोगों के सामने जिनकी मुरादें बरना आती मुख्तलिफ तोहयात भी पेश किया करती हैं, या फिर वो लोगों को ये यकीन दिलाती हैं कि फलाह दरवेश से मांगी हुई मुरादें बिलखसूस पूरी होती हैं। ये इस बात का भी पता रखती हैं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है और इस तरह अपनी मुल्क को, अपने मालक को ये मौका फराहम करती हैं कि वो मुख्तलिफ राजों को मुनकशिफ करें कि पाक बाद दरवेशों को इल्मे गैब होना लाजमी है। अलगर्ज इन तमाम तरीक़ार का शुमार मुमकिन नहीं जिनका इस्तेमाल इन दरवेशों की मकबूलियत के लिए जाता है। बिलफर्ज अगर वो कोई काबिल तरीफ काम सर अंजाम देते हैं तो वह शैतान की आनत से होता है। वो जब अपने घरों से निकलते हैं तो पैदल नहीं चलते बल्कि गाड़ी या घोड़े पर सवार होते हैं और अपने ज़ाती अदना तरीन खादमों को भी हमरा रखते हैं ताकि उनके मुकल्दों और मानने वालों को कसरत जाहिर हो। वो राह में इंतहाई इनकसारी का मुजाहरा करते हैं और सड़कों पर राह चलते मर्द और औरतें ज़मीन पर गिर गिरा और हाथों को बुलंद करके इल्तजाएं करती हैं, गोया या वो किसी मुत्तकी और खुदा रसीद बुजुर्ग से मुखातब हों। ऐसे मौक़ों पर हर शख्स अपनी आरजुओं का इजहार करता है। تندرستی کے لیے یا بدروحوں سے نجات کے لیے، غرض اپنی ضروریات کے لیے مطابق، یہ منافق شخص نہایت سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ہر ایک کو اشارہ کرتا جاتا ہے، گویا وہ ہر ایک کو آس دلاتا ہے کہ ہر کس و ناقص کو تسلی دینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ میں ان لوگوں کی غلاظتوں کا سارا حال بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ کم ہوگا۔ میں اس غلطی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا جس کے متعلق سینٹ پال نے اشارہ کیا ہے۔ فریب سے بچو، بدی کا اظہار نیک سیرت کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ تاہم ان منافقوں کی گستاخیوں اور شرمناک حرکات کا حتی کل امکان اظہار ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود مغلی سلطنت کے عوام اور افرادوں ان لوگ کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ انہیں قیمتی تحفے بھی بھیجتے ہیں، مالی بہترین پھل اور ترکاریاں، گدڑیے، بکریاں اور دودھ ان کی نظر کرتے ہیں۔ اس طرح بدکماش کسی میرے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مزید برآں شہزادے اور عمائد سلطنت بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اورنگزیب نے بھی اس بدعنوانی کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ وہ خود ایسے آدمیوں کا ساتھی، منافق اور دھوکے باز تھا۔ کرشموں اور فریب کاریوں کی ایجاد میں ان کا اہم پلہ تھا۔ تاہم اس نے ایسے 12 آدمیوں سے جو دلی میں ہی رہتے تھے انتقام لینا چاہا۔ انہوں نے دار کے متعلق یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ساری مغل سلطنت کا شانہ شانہ ہوگا اور حاکم مطلق کی حیثیت سے تمام لوگوں پر فتح پائے گا، اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کریں گے کہ اس کی مدد فرمائیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجاؤں کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیگر امور سلطنت کو سر انجام دینے کے بعد اورنگزیب نے ان لوگوں کو بلوایا۔ جب سب اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے بظاہر ان کی پاکیزگی اور اعلیٰ مقبولیت کو سراہا۔ اس بنا پر ان تمام حضرات نے یہ التجا کی کہ وہ اس کے سامنے کوئی کر امت دکھائیں تاکہ اس کا مقلد بننے کے لیے خود اسے بھی کوئی جو ازمل سکے، اور اگر وہ یہ کر دکھائیں تو وہ ثابت کر دے گا کہ ہندوستان کا شہنشاہ پاک بازوں اور خدا کے برگزیدہ بندوں کو کتنا محترم سمجھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ان لوگوں کو 3 دنوں کی مہلت دی، جس کے دوران میں انہیں بادشاہ کی خواہشات کر پورا کرنا تھا۔ یہ سن کر وہ پاک باز لوگ تد تہذیب میں مبتلا ہو گئے۔ ان پر منکشف ہو گیا کہ سادہ لو انسان کے ساتھ مذاق کرنے کا وقت چلا گیا ہے، اور اورنگزیب کی طرح ہنسی مذاق کا آدمی بھی نہیں تھا، اس لیے انہیں سخت پریشانی دامن گیر ہوئی۔ مختصراً یہ کہ ان میں سے فوراً یہ اقرار کر لیا کہ وہ بلخ کے ایک مشہور ولی اللہ کی اولاد ہے۔ میں نے یہ کہا، اور اس لیے لوگ ان کا احترام ولیوں کی اس طرح کرتے ہیں گو وہ خود کو دنیا کا گنگا ترین شخص تصور کرتے ہیں، پس ان سے کسی قسم کی کر امت کی توقع حاصل ہے۔ اورنگزیب نے ان کے جواب کو نظر انداز کر دیا اور ان سب کو یہ کہا کہ رخصت کیا کہ 3 دنوں کے اندر ان کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے سامنے کوئی کرشمہ دکھائیں۔ وہ بہت مایوسی کے عالم میں واپس آئے اور اپنی عادات کے مطابق انہوں نے اپنی مہربانی روحوں سے رجوع کیا، اور اس خیال سے بہت ہی نظریں گزاری کہ کم خواب ہی ہیں، اور اورنگزیب کو یہ جتا دیں کہ یہ لوگ واقعی ولی اللہ ہیں۔ اس طرح بادشاہ انہیں تھوڑی بہت حرمت کے قابل ضرور سمجھے گا۔ بہرحال 3rd دن اورنگزیب نے انہیں بلوایا۔ جب وہ اس کے حضور میں پہنچے تو اس نے نہایت درشت الفاظ میں انہیں یہ کہا، مہلت گزر چکی ہے اور اب ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کوئی کرامت دکھائیں، ورنہ انہیں کوڑے مارے جائیں گے اور سب کو اکٹھا برسر عام ذلیل کیا جائے گا۔ اس طرح ان لوگوں کو نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے گا جو اب تک ان کی فریب کاریوں اور دغا بازیوں سے گمراہ ہوتے رہے ہیں۔ اب تو वो कुछ कह कर सकते थे, ना ही कोई उम्मत करामत दिखा सकते थे, इसलिए उनमें से कुछ को जलावतन कर दिया गया और कुछ किलों में इस वादे से पर कैद में डाल दिया गया कि जब वो कोई करामत दिखाएंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। बलख के दोनों अशखास को सख्त सुस्त कहकर उसने ये हुक्म दिया कि वो अपने घरों को वापस जाएं और फिर कभी अपनी बुजुर्गी और बर्तरी का दावा न करें और इन्हें फौरी तौर पर सजा दी जाएगी। अकबर ने एक रस्म कायम की थी और उसके जानशीनों ने भी उसे जारी रखा कि अगर शाहे ईरान किसी शख्स को जायजाना जाज तौर पर कोई इजा पहुंचाता और वो वहां से भागकर मुगल बादशाह की पनाह में आता तो वो उसकी तवाज़ा और सरपरस्ती करते। हर आदमी की हैसियत के मुताबिक उसकी तनख्वाह मुकर्रर की जाती। सिपाही पेशा लोगों को अहदेदार और सिपाही तबीबों को तबीब और उलमाए दीन को कजा के मनसब पर फायज किया जाता था। इन्हीं मनसबदारों को की हैसियत से तनख्वाह दी जाती थी क्योंकि ये लोग मुगलों के काम के ना होते थे, इसलिए कि मुगल एक दूसरे के फरके से ताल्लुक रखते थे और ईरानियों की तरह अली रज़ा अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले न थे। लिहाजा इन्हें कश्मीर भेज दिया जाता था जहाँ वो अपनी आमदनी में बिला किसी परेशानी के आराम से गुजारा करते थे। चूंकि मुसलमान भी इन्हीं कैदियों के पाबंद हैं जिनके दूसरे लोग मसलन अपने जिंदगी के दिन पूरे करने करके मर जाना, लिहाजा जब उनमें से कोई खत्म हो जाता तो दूसरे उसकी आमदनी को आपस में तकसीम कर लेते। औरंगजेब ने इस बदअनवानी की इसलाह करनी चाहिए और उस लिए कश्मीर के तमाम मुनसबदारों को यह हुक्म दिया कि वो दरबार में हाजिर हों। इन सब की एक कसीर तादाद थी। मुझे उनमें से एक शख्स मोहम्मद जम्मान से शनासाई हासिल करने का मौका मिला। ये शख्स बहुत जहीन था जिसे शाह अब्बास बादशाह ईरान ने अपनी हकूमत के आगाज में बहसियत तालब इलम रूम भेजा था। मकसद ये था कि वहां जाकर हमारे पादरियों का जवाब देना सीखे जो ईरान के इतलावों और मुसलमान से मुनाजर करते थे। मोहम्मद जबान जो अपने अकायद से बखूबी वाकफ था, मताले के बायस सदाकत को पाया गया और बजाय उसके के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम की बताए हुए अकायद हैं रसख होता। इन्हें खैरबाद कहकर ईसाई हो गया और पाल का नाम कबूल करके खुद को पालू जमान कहने लगा। अब वो ईरान वापस आ गया। यहाँ ईरानी उलमाए ने उससे बातचीत करके ये अंदाजा लगाया कि वो इस्लाम से ज्यादा ईसाइत की तरफ माइल है, हालांकि वो अपने ईसाई होने के को पोशीदा रखता था। उन्होंने उसके खिलाफ बातें करनी शुरू की और वो इस बात से खौफजदा होकर मुबाद उसे कोई नुकसान पहुंचे ईरान से भाग निकला और शाहजहां से ईमान चाही। मनसबदार की हैसियत से उसकी तनख्वाह मुकर्रर हुई और उसे कश्मीर में दूसरे ईरानियों के पास भेज दिया गया। जब औरंगजेब ने उन लोगों को बुलवाया तो वो भी दिल्ली आया। यहाँ उसने ईसाइयों से रबत जबत कायम किया। उसके पास लातीनी की चंद किताबें थीं और वो आपस में दीनी मिसाइल पर बहस करते थे। गो वो ईसाई था और खुद को भी ईसाई कहता था, मगर इसका तर्ज जिंदगी मुसलमानों से किसी तरह मुख्तलिफ ना था। मुनसिबदारों के वजूद के बारे में इत्मीनान करके औरंगजेब ने इन्हें कश्मीर वापस भेज दिया। फिर उसने ये अहकामात नाफज किए कि हिंदुस्तान में जो शख्स भी किसी मकान या बाग का मालिक है हक मलकियत की दस्तावेज पेश करे। मकसद ये था कि ये देखा जाए कि आया वो मलकियत किसी शाही फरमान के तहत है या इन्हें इसलिए कि कोई शख्स बिला किसी सद या फरमान के उन अशिया के हकूक को मलकियत हासिल नहीं कर सकता। ऐसे फरमानों को जिन्हें उसने सही समझा मंजूर कर लिया और जिन्हें जाली थे उन्हें रद्द कर दिया। बादशाहों के पास अमूरे सल्तनत को दुरुस्त रखने का सबसे बेहतरीन जरिया काबिल एतमाद जासूस होते हैं। ये लोग बादशाहों को मुल्क के बारे में बिलखसूस अहदेदारों के बारे में इतलाआत फराहम करते हैं। ये बात पूरी ईमानदारी से कही जा सकती थी कि मुगल हुकूमत ऐसे लोगों को रखने में किसी से पीछा नहीं जिनसे ये मालूम किया जा सके कि कुछ हो रहा है। अपने पूरे दौरे हुकूमत में औरंगजेब के पास इतने अच्छे जासूस रहे कि वह यहाँ तक जानते थे कि अगर इस बात को इस तरह कहा जा सकता है, लोग क्या सोच रहे हैं। ना ही पूरी सल्तनत में, बिलखसूस शरदिल्ली में कोई ऐसी बात होती थी जिसकी इतला उसे ना हो सके। इस तरह उसे एक रात ही इल्म हुआ कि अली वर्दी खां की बीवी अपने घर से चली गई है। बिला तो खैर उसने शोहर को यह हुक्म दिया, उसे वापस लाए। ऐसे ही जासूस के जरिए एक रात उसे ये पता चला कि एक दुकान के मेहराब में सड़क पर गिरी गई, जिसके मलबे के नीचे तीन फकीरों दब गए हैं। सुबह सवेरे औरंगजेब अपनी सवारी पर इसका पता चलाने निकला। उसने गिरी हुई दुकान को देखकर अपना हाथी वहां रुका और ये हुक्म दिया कि दबे हुए फकीरों को निकाला जाए। दरबारी अमरा उस हुक्म पर बहुत मुतजब हुए, इसलिए कि उन्हें यह मालूम न था कि मलबे के नीचे कुछ मुर्दा जिस्म पड़े हुए हैं। हुक्म की तामील हुई और मुर्दा फकीरों को बाहर निकाला गया। बादशाह उस वक्त तक वहां ठहरा जब तक कि लाशें बरामद न हुई, और फिर उसके अहकाम के मुताबिक उसकी तहकीक हुई। उसने जनाजे के अखराजात के लिए कुछ रकम भी दी। इस वाक़े के बाद औरंगजेब को वली समझने लगे और सब बे आवाज बुलंद नारा लगाया, वली बादशाह की उम्र दराज। आज तक ऐसे लोग या तो महज खुश आमद से, ये फिर इसलिए के इससे टूने मटने बाज अजीबो गरीब काम कहे वली बाकरामत कहते हैं। मामलात सल्तनत को मुनज़्ज़म करने और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इन बराइयों को दूर करने के बाद जो उसके बाप शाहजहां की लापरवाही की बदौलत मुमकलत में पैदा हो गई थी, औरंगजेब ने खुद पर बहुत से नाज़ा था। और अब वो महज अच्छे काम करके ही आसूदा ना होता, बल्कि उथक कोशिश उस उम्र की करने लगा कि उमरा उसकी तारीफ और उसके बाप की बराइयां करें। उसने शाहजहां की शोहरत कम करने और उसे हर मुमकिन तरीक से बदनाम करने हैं कोई वकीफा बाकी ना रखा। अलावा अजी महज इसलिए कि बूढ़े बाप को और ज्यादा गुस्सा आए उसकी कैद पर, और ज्यादा बार गुजरे, और उसे अक्सर खतूत लिखा करता था जिनमें उन कारगर्दियों का गिनवाता जो पिछली बदइनवानियों को दूर करने के लिए अमल में लाई गई थी, और हर इस कानून को मतनू करता जो शाहजहां के जमाने में राय था। उसने शाहजहां पर अवाम के साथ बेइंसाफी, वजार के साथ लापरवाही और दूसरों की बीवियों से बदकारी, मीना बाजार लगाने की बदइनवानी, शीश महल में औरतों के साथ ऐशो इशरत में फजूल खर्ची और महल में एक आम रकासा को ठहराने पर अय्याशी के इल्जाम लगाए। इसके बरअक्स वो अपनी कारगर्दियों की तहसीन करता और अपने इंतजाम के शानदार तौर पर बयान करता। बस ये कहा जा सकता है कि औरंगजेब इस यहूदियों का पक्का शिगिर्द था, जिसका जिक्र मसीह ने किताब मुकद्दस में किया है, जो बजाय कि उसके खुदा से रहम का तलब हो, अपने अच्छे कामों को गनवाने के अलावा और कुछ ना करता था। मजीद बरा वो इस बात पर भी नाज करता था कि लोगों की शिकायतें सुनने और मुमकलत की बुराइयां दूर करने की कोशिशें हैं। वो बेशतर वक्त दीवाने आम में ही गुजारता था। शाहजहां भी इन खतूत का जवाब न देने और बेटे की बात को दरगुजर करने की कोशिश न करता। वो उसे ये बताता कि जिस शख्स ने बाप से बगावत की हो, भाइयों पर जुल्म किया हो, यहाँ तक के बेटों को भी न छोड़ा हो, वो दूसरों के लिए कभी नेक काम नहीं कर सकता। जहाँ तक उसकी तारीफ का ताल्लुक है, वो दिन के कई कई घंटे दीवाने आम में गुजारता, तो उससे बढ़कर इस बात का बैन सबूत और क्या होगा कि अमूरे सल्तनत सही तौर पर सर अंजाम नहीं पाते। इसलिए जब वो खुद शाहजहां नाजम अमूरे सल्तनत था, तो अहदेदार उन्हें मुस्तअद थे कि रोजाना नकारा बजवाने के बावजूद के अगर किसी के साथ कोई बेइंसाफी हुई हो, तो वो बादशाह के हजूर में हाजिर हो। कई कई माह गुजर जाते और कोई शख्स अर्जी ना गुजारता। उनकी ये लड़ाई एक मुद्दत तक जारी रही, यहाँ तक कि शाहजहां ने नहायत गुस्बानाक और होकर और औरंगजेब को ये लिखा कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि बहर सूरत जो कुछ भी तुमने किया, वो इस कुव्वत का नतीजा है जो औलादन इस शख्स में थी जिसने तुम्हें पैदा किया। इन तमाम दलाइल के अलावा जो शाहजहां ने खुद अपने तौर पर दिए। काबुल के गवर्नर में भी इस एक तवील फहरिस्त शाहजहां की खूबियों और औरंगजेब की कार्रवाइयों के मुतलक वर्णा की, जिसमें उसने बेटे के खिलाफ बाप की पुरजोर हमायत की। इन खतूत से मुतासर होकर औरंगजेब नरम पड़ गया और बाप से नरम दिली का इजहार करने लगा। दीगर खतूत के जरिए उसने इसकी दिलजोई की, उसे बहुत से तोहफे तहफ भेजे। पहलू उन रजाना किए कि उसका वक्त अच्छा गुजरे, मौसीकार भेजने ताकि कैद की कोफत कम हो, और उन्हें इकसाम की दिगर तफरीहात का सामान किया, जिन्हें शाहजहां अपनी आज़ादी और बादशाहत के ज़माने में मरगूब रखता था। इतने प्यार के मुजाहरे के बाद औरंगजेब ने अपने बाप से उन जोहरात की फरमाइश की जो अब भी उसकी तहवील में थे। शाहजहां ने जवाब दिया कि मैं एक सख्त खत लिख के, अगर दोबारा तुमने इस किस्म की बात की तो मैं इन जोहरात को खरल में पीस कर सफूफ बना दूंगा और तुम्हें वो महज इसी सूरत में मिल सकेंगे। लेकिन जोहरात के बदले में उसने औरंगजेब के पास वफादार असद खां को भेजा और अपनी पुरजोर सिफारिश के साथ ये कहलवाया कि ये शख्स हर जही हयात इंसान से ज्यादा काबिल इत्माद है। दूसरे अशखास बाप के खिलाफ बागी हुए और जब मौका आएगा तो बेटे के खिलाफ भी बगावत करेंगे। इसके बरखिलाफ असद खान ने अपने बादशाह का साथ छोड़ना कभी न चाहा, और इसलिए बिला शक वो बेटे के साथ भी वफादारी बरतता था। औरंगजेब ने असद खान को मुलाजम रख लिया और उसे दरबार में एक खास अहद से पर फाइज किया, और बिलाआखर जाफर खान की मौत के बाद उसे पूरी मुमलकत का वजीर आला बनाया गया। असद खान आज 10 मार्च 1499 तक उसी मनसब पर मुकम्मल वफादारी के साथ फाइज हैं। औरंगजेब ने इन जोहरात के बारे में, जिन के मुतल्लक उसने इतनी जर्स का मुजाहरा किया था, शाहजहां को फिर कभी कुछ ना लिखा। उसने फौलाद खान खजानची से एक हुक्म के जरिए ये मालूम कर लिया कि कितने अरसे में 2 साल से जोहरात को देखकर इन कीमत का अंदाजा लगा सकता है। फुलाद खान ने इस तनखी के लिए वक्त मांगा और 6 माह की मुद्दत के बाद ये जवाब भेजा कि सारे जोहरात को देखने और उनकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए 14 साल की मुद्दत दरकार होगी। इस जवाब को सुनकर औरंगजेब ने इतना वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और इस ख्याल को तर्क कर दिया।